زمانوں کی امنگ، باب نمبر 22، یوحنا کی قید اور شہادت۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پہلا شخص تھا جس نے مسیح کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی، اور یوحنا پہلا شخص تھا جسے اذیت اور موت کا سامنا کرنا پڑا۔ بیابان کی آزاد فضاؤں اور بہت بڑی بھیڑ کو چھوڑ کر جو اس کے کلام پر ایمان لے آئی، یوحنا اسیر ہو گیا۔ اسے ہیرودیس انتپاس کے قلعہ میں نظر بند کیا گیا۔ یہ یردن کے مشرق کی طرف ہے جہاں یوحنا نے اپنی زیادہ تر خدمت انجام دی۔ ہیرودیس نے بذات خود یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی سنی تھی، مگر توبہ کی بلاہٹ پر بد چلن ہیرودیس کانپ اٹھا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ مرقس 20:6۔ یوحنا نے بڑی ایمانداری سے بادشاہ کے احتیار کی پرواہ کیے بغیر اسے اس بدی سے آگاہ کیا جو اس میں پائی جاتی تھی۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بادشاہ کو بتایا کہ تجھے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیس کو بطور بیوی رکھنا روا نہیں۔ یوحنا کی منادی سے متاثر ہو کر ہیرودیس نے اپنی بری راہیں ترک کرنا چاہیں، مگر ہیرودیس نے اسے ایسا کرنے نہ دیا، اور بالآخر یوحنا کو قید میں ڈلوا دیا۔ یوحنا بہت سرگرم زندگی بسر کرنے کا عادی تھا، مگر اب قید خانہ میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ زندگی اس پر بوجھ بن گئی۔ بوریت کی اس زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، بلکہ آئے روز الجھنوں میں اضافہ ہوتا گیا، لہذا شک و شبہات نے اسے گھیر لیا۔ اس کے باوجود اس کے شاگردوں نے اسے ترک نہ کیا، قید خانہ میں انہیں اس سے ملنے کی اجازت تھی، چنانچہ وہ بدستور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، نیز مسیح یسوع کی خدمت کی خبریں اس تک پہنچاتے رہتے تھے، اور اسے یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ لوگ جوک در جوک اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور پھر وہ خود ہی سوال کرتے کہ اگر یہی مسیح ہے تو وہ تیری رہائی کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتا؟ اس نے کیوں اپنے وفادار خادم کو قید میں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ یہ سوالات بے تاثیر نہ تھے۔ ان سوالات کی وجہ سے یوحنا کے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ ابلیس یوحنا کے شاگردوں کے کلام سے خوش ہوا، کیونکہ ان کے کلام نے یوحنا کا دل توڑ دیا تھا۔ جس نے مسیح کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی تھی، جنہیں یوحنا کے دوست خیال کیا جاتا تھا، وہ ایسے خطرناک دشمن ثابت ہوئے کہ انہوں نے اس کے ایمان کو تقویت دینے کی بجائے متزلزل کر دیا۔ یسوع مسیح کے شاگردوان کی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی مسیح کی بادشاہی کی نوعیت اور کیفیت کے بارے نہ سمجھ پایا تھا۔ وہ خیال کرتا تھا کہ مسیح فوراً ہی داؤد کے تخت پر برا جمان ہو جائے گا، اور جب وقت گزرتا گیا اور یسوع نے بادشاہ ہونے کا اعلان نہ کیا تو اس سے یوحنا بڑا پریشان ہوا۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے کے بادشاہ آئے اس کی راہ تیار ہونا ضرور ہے، اور یہ کہ یسعیاہ نبی کی پیشنگوئی کی تکمیل ہونی چاہیے، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ یسعیاہ 4:40۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے انسانی غرور اور اختیار کی گھاٹیوں اور ٹیلوں کو دیکھا تھا جنہیں ہموار کرنے کی ضرورت تھی۔ اس نے مسیح کے بارے بتایا تھا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیہان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے گھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ لوکا 17:3۔ ایلیاو نبی کی طرح جس کی روح اور قدرت میں یوحنا آیا تھا، وہ ایسے خدا کا متلاشی تھا جو آگ سے جواب دے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت چھوٹے بڑے ہر طبقے میں بڑی بے باکی سے انجام دی۔ ہیرودیس بادشاہ کو اس نے اس کے گناہ کی وجہ سے جھڑکا۔ اس نے اپنی جان کی بھی فکر نہ کی، اور جس کام کے لیے آیا تھا اسے بے دھڑک انجام دیا۔ اب وہ قید خانہ سے رہائی کے لیے یہودا کے قبیلہ کے ببر کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا، جو کچلے ہوں کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ مگر اس نے دیکھا کہ مسیح تو تعلیم دینے، بیماروں کو شفا بخشنے اور شاگرد بنانے پر ہی کانے ہیں۔ उसने ये भी सुना कि वो महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, जबकि रोमियों का जू बनी इसराइल पर हर रोज भारी होता जाता है। ही सब कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की समझ से बालातर था। शैतानी कुव्वतें उसकी रूह को दुख देतीं और उस पर हौलनाक खौफ तारी रहता। बदी वजह वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आया माऊद मसीह यही है जिसका हम मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। उसे ये भी ख्याल आया कि अगर ये शख्स मसीह माऊद नहीं तो मेरी मुनादी का क्या मतलब ठहरा। यूहन्ना अपने मिशन के अंजाम पर सख्त मायूस हुआ। यूहन्ना को ये भी देखकर दिली सदमा हुआ कि उसके अपने शागिर्द मसीह का यकीन नहीं करते। क्या वो काम जो उनने उनके लिए किया था बेफल रहा? क्या उसने अपने मिशन से बेवफाई की जो उसे खिदमत करने से रोक दिया गया? और अगर नजात दहिंदा आया है और यूहन्ना ने अपनी बलाहट से इंसाफ किया है तो क्या मसीह येसु जालिमों को कुचलकर उसे आजाद ना कराएगा? मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपना कुल्ली ईमान मसीह के ताबे ना किया था। आसमान से आवाज, रूह का कबूतर की सूरत में मसीह पर उतरना और रूह की कुदरत जो खुद यूहन्ना पर ठहरी, ये सब कुछ नजात दहिंदा की हुजूरी में हुआ। उसके अलावा उसने सामने नबियों की शहादतें मौजूड़ थीं जो साबित करती थीं कि येसु नासरी ही मऊद मसीह है। यूहन्ना ने अपने ये शकूक और परेशानी का इजहार अपने साथियों के साथ ना किया, बल्कि उसने फैसला किया कि किसी को भेजे जो इस सिलसिले की अच्छी तरह छानबीन करके उसे बताए। इस काम की जिम्मेदारी उसने अपने दो शागिर्दों पर डाली ताकि वो आकर बाकी भाइयों को सही सूरत हाल से आगाह करें। उसकी ये भी तमन्ना थी कि मसीह खुद अपनी जबानी कोई संदेशा भेजे ताकि उनका ईमान जाता न रहे। शागिर्द ये पैगाम लेकर यसू के पास गए। आने वाला तो ही
है या हम किसी और की राह देखें? यह कोई ज्यादा अरसे की बात नहीं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद पे ऐलान किया था कि देखो, यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा में खोलने के लायक नहीं, यूहन्ना 27:1-19। लेकिन अब खोस ही सवाल पूछ रहा है, क्या आने वाला तो ही है? इंसानी फितरत के लिए यह सख्त नागवार और मायूस कुन है। अगर यूहन्ना जैसा वफादार शख्स मसीह को पहचानने में नाकाम रहा तो अवाम से क्या तवक्को की जा सकती है? यीशु मसीह ने यूहन्ना के शागिर्दों के सवाल का फौरन जवाब न दिया, लेकिन जब वो उसकी खामोशी पर हैरान खड़े थे, बीमार और तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला लोग उसके पास शिफा के लिए आना शुरू हो गए। अंधे टटोलते टटोलते उसके पास पहुंचे, बास बीमार खुद मसीह के पास आए, जबकि बास को चारपाई पर डालकर लाया गया। हर एक की कोशिश थी कि पहले मसीह के करीब पहुंचकर शिफा पाए। मसीह जो तबीब आजम है, उसकी आवाज बहरों के कानों में सरायत कर गई और वो सुनने लगे। अंधों की आंखों को उसने छुआ और उनमें फौरन नूर हो गया और फितरत को देखने लगे। नीज अपने मेहरबान दोस्त और रिश्तेदारों और अपने नजात दहिंदा के पहचानने लगे। मसीह ने हर तरह की बीमारी और बुखार को झड़क कर खत्म कर दिया। जब उसकी आवाज करीबुल मर्ग बीमारों के कानों में पड़ी तो उन्होंने फौरन जिंदगी पाई। अपाहज और बदरूहों के सताए हों को उसने चंगा कर दिया। उसके कलाम से उनकी दीवानगी जाती रही और वो उसके कदमों में बैठकर उसकी परस्तिश करने लगे। बीमारियों से शिफा देने के बाद उसने उन्हें अबदी जिंदगी का कलाम सुनाया। यहू लोग थे जिन्हें काहनों और रब्बियों ने रद्द कर दिया था। यूं शिफा और तालीम देने में सारा दिन गुजर गया। ये सब कुछ यूहन्ना के शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा और सुना है। वो जाकर यूहन्ना को बताओ, इलावाजी फरमाया, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। लूका 23:7। इंसानी दुखों का मुदावा करना ही उसके इलाही होने का मुदल्लल सबूत था। यूहन्ना के शागिर्द पैगाम लेकर अपने आका के पास लौट आए। उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। तब यूहन्ना को मसीह के बारे ये पेशनगोई याद आई। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसीह किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے رد کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسہ دوں. یسعیاہ 1:61-2. مسیح کے کام صرف اسے مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے ہی نہ تھے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ اس کی بادشاہی کس نوعیت کی ہوگی. یوحنا پر یہی ہی سچائی کھلی جو بیابان میں ایلین پر کھلی. اس نے کہا، باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکرے کر دیے.
خداوند آندھی میں نہ تھا، اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہ تھا،
اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہ تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی. اسلاطین 11:19-12. پس یسوع تیروں، کمانوں، بھالوں یا برچھیوں کے ساتھ اپنی حکومت قائم کرنے نہ آیا تھا، بلکہ وہ مہر و محبت کے کلام کے ذریعے انسانی دلوں پر حکمرانی کر میں آیا تھا. یوحنا کی اپنی خود انکاری اور جان نثاری کی زندگی بھی مسیح کی بادشاہی کے اصولوں کے مطابق تھی. یوحنا اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی توقعات کے متضاد ہے. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مسیح کی الوہیت کے جو ثبوت اس کے لیے کافی، معقول اور خاطر خواہ ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے یوحنا نے دیکھا کہ مسیح یسوع کے مشن سے بنی اسرائیل کو لعنت و نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے مسیح نے فرمایا کہ مبارک وہ ہے جو کسی موقع پر بھی میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے. یہ یوحنا کے لیے نرم سی جھرکی تھی. زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر یسوع مسیح نے خود اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی مرضی خداوند کے تابع کر دی. جب یوحنا کے شاگرد چلے گئے تو یسوع کے بارے کلام کرنے لگا. مسیح کا دل اپنے وفادار گواہ یوحنا کے لیے بھر آیا جو ہیرودیس کی قید میں تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ خدا نے یوحنا کو ترک کر دیا ہے، یا یہ کہ آزمائش کے وقت اس کا ایمان جاتا رہا ہے. چنانچہ اس نے بھیڑ سے پوچھا، تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ یردن کے کنارے اونچے لمبے سرکنڈے جو ہر طرف سے آنے والی ہوا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے. یہ سرکنڈے شرع کے معلموں کی صحیح عکاسی کرتے تھے جو یوحنا کے مشن پر نکتہ چینی پر آمادہ رہتے تھے. وہ عوام کی رائے کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے خود کو حلیم نہ کیا تاکہ وہ اپنے دل کی جانچ کر کے یوحنا کے پیغام کو قبول کرتے، مگر لوگوں کے خوف سے وہ اعلانیہ اس کے کام کی مخالفت بھی نہ کرتے. جو لوگ مسیح کے پاس آئے وہ یوحنا کے کام کے گواہ تھے. اس نے گناہ کی بے خوف اور خطر ملامت کی تھی. ہیرودیس بادشاہ اس کے درباریوں، محصول لینے والوں، سپاہیوں اور سادہ دیہاتیوں سے اس نے ایک جیسا مگر بڑی صفائی کے ساتھ کلام کیا. وہ ہوا کے سامنے جھکنے والا نہ تھا. نہ اسے کسی کی تعریف کی ضرورت تھی، نہ کسی کے تعصب کی پرواہ. جیل اور بیابان دونوں میں وہ خدا سے وفادار رہا. یسوع نے کلام جاری رکھتے ہوئے پھر پوچھا، تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں. یوحنا 25:7. یوحنا تو گناہ کی ملامت کے لیے بلایا گیا تھا، اور اس کا سادہ لباس اس کے مشن کے عین مطابق تھا. مہین اور چمکدار کپڑے خدا کے خادموں کے زیب نہیں دیتے، بلکہ ان کو جو بادشاہوں لے محلوں میں رہتے ہیں، یا پھر حاکموں اور سرداروں کو جو مالدار ہیں. یہاں مسیح خداوند یوحنا کے لباس اور کاہنوں کے لباس کا موازنہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی ظاہری نمائش سے عوام کو مروب کرتے تھے. وہ لوگوں سے تعریف کروانے کے متمنی رہتے تھے اور دل کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے تھے. مسیح نے پھر پوچھا، تو کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بڑے کو. اسی کے بارے لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا. یوحنا 27:7. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। यूहन्ना 28:7। यूहन्ना की पैदाइश से पेशतर यूहन्ना के बाप जकरिया से फरिश्ता ने कहा, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा। लूका 15:1। खुदा की नजर में बुजुर्गी या अजमत क्या है? ये चीजें बुजुर्गी नहीं देतीं जो दुनिया समझती है, मसलन दौलत, हशमत, आले हसबो नसब, अलमियत या आले मरातिब। अगर अलमियत, अदब या दानिश्वरी ही हमारे लिए सब कुछ है, तो ये इज्जत अफजाई इबलीस के हक में जाती है। ये लानत के मुतरादिफ है। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों के सामने ना अवान और नेशनल काउंसिल के सामने अपनी बुजुर्गी चाही, बल्कि उसने ये तमाम इज्जत यीशु नाम को बख्शी। और उसकी ये खुद इनकारी और ईसार पसंदी उसके लिए बुजुर्गी का बायस बनी। वो सब लोग जिन्होंने उसके मुंह से यीशु के बारे गवाही सुनी थी, उन्होंने उसके मरने के बाद कहा, यूहन्ना ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था। यूहन्ना 41:10। यूहन्ना को ना तो एलिय्याह की तरह ये तौफीक दी गई कि आसमान से आग नाजिल करे या मुर्दों को जलाए, और ना ही उसे मूसा के असा किसी कोई कुव्वत दी गई जो खुदा के नाम से मोजज़ा दिखाती। इसकी बलाहट तो सिर्फ मसीह के आगे राह तैयार करना और उसकी आमद की मनादी करना थी। पास उसने बड़ी वफादारी से अपने मिशन को पूरा किया। इसीलिए उसके सामईन ने गवाही दी कि जो कुछ उसने मसीह के बारे कहा था सच था। मसीह यीशु को ऐसे ही गवाहों की जरूरत है जिनके बारे लोग कह सकें कि जो कुछ उसने कहा है वो सच है। यीशु ने फरमाया, यूहन्ना बनियों में सबसे बड़ा है, क्योंकि बनियों ने तो यीशु को बहुत दूर से ईमान की निगाह से देखा था, जबकि यूहन्ना ने मसीह को नफ़से नफीस देखा और उसकी गवाही भी दी। बेशक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आसमान की बादशाही में आले मकाम रखता है, क्योंकि उसने बनी इसराइल के सामने मौद मसीह की आमद की मनादी की। मगर यीशु ने यह भी फरमाया कि जो खुदा की बादशाही में छोटा है हो उससे बड़ा है। लूका 28:7। यूहन्ना बपतिस्मा दिसिप्ला वाला खुदा और नबियों का नुमाइंदा और जरिया था। खुदा का नुमाइंदा होते हुए उसे शरीयत का नाता जाहिर करना था, और नबियों की नुमाइंदगी करते हुए मसीहियों को शरीयत और मसीह के बारे बताना था। वो मुद्हम सी रोशनी थी जिसके बाद अजीम रोशनी नमूदार होने को थी। रूहुल कुदुस की बदौलत यूहन्ना का जहन मुनव्वर हो चुका था, ताकि ये
रोशनी वो अपने लोगों पर चमकाए। जैसा नूर यीशु की तालीम और नमूना से फैला, ऐसा नूर न कभी फैला न फैलेगा। मसीह का मिशन और खुद मसीह रस्मी कुर्बानियों के जरिए जाहिर तो हुआ, मगर बहुत ही कम। हत्ता कि यूहन्ना भी पूरी तरह समझ ना पाया कि कैसे मसीह के जरिया गैर फानी जिंदगी हासिल होती है। इस खुशी से कतअ नजर जो यूहन्ना को अपने मिशन की वजह से नसीब हुई, यूहन्ना की जिंदगी दुखों से भरपूर थी। उसकी आवाज बयाबान के अलावा कहीं सुनी न गई। तन्हाई की जिंदगी उसका नसीबा थी, बल्कि उसे तो इतना भी नसीब ना हुआ कि अपनी खिदमत का नतीजा भी देख सके। उसे यह भी हक न मिला कि यीशु मसीह जो अजीम नूर था उसकी खिदमत को देखकर गवाही दे सके। ये उसकी किस्मत में न था कि अंधों को बीनाई पाते देखे। उसने बीमारों को शिफा पाते, मुर्दों को जिंदा होते भी न देखा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यीशु की तालीम और मौजजात जिस जिस शागिर्द ने देखे, वो यूहन्ना से बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है और यूहन्ना से कहीं ज्यादा अजीम। बड़े बड़े इज्तिमा के जरिए यूहन्ना की मनादी दूर दराज तक पहुंच गई, बल्कि खुद उसकी तमाम इलाके में बहुत मशहूरी हो गई, और उसकी कैद की खबर में अवाम ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। उसके बेइल्जाम जिंदगी, अवाम से मोहब्बत और नेक जज्बात की वजह से ख्याल किया जाता था कि उस पर कोई बड़ी आफत नहीं आएगी। हेरोदेस तो मानता था कि यूहन्ना खुदा का नबी है, और वो उसे आजाद करने पर भी राजी था, मगर हेरोदियस के खौफ से उसने उसे आजाद करने में देरी की। हेरोदियस भी जानती थी कि वो यूहन्ना को कत्ल नहीं करवा सकती जब तक वो कोई ऐसी चाल ना चले जिसमें फरेब शामिल हो। हेरोदेस के जन्मदिन पर
सल्तनत के उमरा और दरबारियों को महफूज करने के लिए मदऊ किया, जिसमें खाने पीने की ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। उस वक्त हेरोदेस के जन्मदिन पर पार्टी का सार इंतजाम संभाला था। जब ज़ियाफ़त में खाया पिया जा रहा था तो हेरोदिया ने अपनी बेटी को मेहमानों को महजूस करने के लिए भेजा। हेरोदियस की बेटी का नाम सल्लूमी था, जो उठती जवानी में थी। उसके नाच से सारी महफिल इश इश कर उठी। हेरोदेस शराब के नशे में धत था, उसे तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती थीं। शराब के छिलकते जाम, जगमग जगमग करती रोशनियां, अनवाओ अकसाम के खाने उसकी चारों तरफ थे, और उस पर तरह ये कि एक नौजवान खबरो दोशीजा उसके सामने नाच रही थी। उस लड़की की अदायगी से हेरोदेस इतना खुश हुआ कि उसने लड़की को कहा, मांग क्या मांगती है, मैं अपनी आधी सल्तनत तक तुझे देने की कसम खाता हूं। सल्लूमी दौड़कर अपनी मां के पास पूछने गई कि मैं क्या मांगू। मां के पास जवाब तैयार था। उसने कहा, बादशाह से योहन्ना का सर मांग ले। सल्लूमी नहीं समझती थी कि उसकी मां के दिल में योहन्ना से बदला लेने की आग इस कदर भड़क रही है। पल्ले तो उसने पसोपेश किया, मगर बाद में अपनी मां हेरोदियस के दबाव में आकर उसे बादशाह से योहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगना पड़ा।
हेरोदेस उस पर बड़ा मुताज्जिब और परेशान हुआ। बदमस्ती की रंग रलियां एहतताम पुजीर हुईं, और अय्याशी के मंजर पर मनहूस खामोशी छा गई, क्योंकि योहन्ना की जान लेने पर बादशाह पर हौलनाक खौफ छा गया। अगर कोई नबी को बचाने के लिए कहता तो बादशाह खुशी खुशी उसकी जान बख्शी कर दाता, बल्कि उसने सबको मौका दिया कि योहन्ना के हक में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे। वो सब लोग योहन्ना की मुनांदी सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। वो ये भी जानते थे कि योहन्ना बेगुनाह और खुदा का खिदम है, मगर लड़की मुतालबे पर वो बोल न सके। किसी ने भी हेरोदियस की मुखालफत मोल लेने की जुर्रत न की, क्योंकि उन्हें अपनी जान से हाथ धोने का खतरा था। इस खतरे के पेश नजर किसी ने भी योहन्ना की जान बख्शी की सिफारिश न की। ये तमाम लोग आले मरातिब रखते थे, उन पर बड़ी संजीदा जिम्मेदारियां भी थीं। इसके बावजूद सब खाने पीने नाच रंग और नशे में चूर थे। उनकी खामोशी से पता चलता था कि वो लड़की को नबी का सर देने पर राजी हैं। हेरोदेस ने बेसूद उनका इंतजार किया। आखिरकार उसे योहन्ना का सर कलम करने का हुक्म देना पड़ा। योहन्ना का कटा हुआ सर फौरन बादशाह और मेहमानों के सामने लाया गया। वो होंठ हमेशा के लिए बंद हो गए, जिन्होंने बड़ी वफादारी से हेरोदेस को कहा था कि गुनाह की जिंदगी से बाज आ जाओ। वो आवाज फिर सुनाई न दी जिसने कहा, तौबा करो। अय्याशी की एक रात ने उसकी जान ले ली, जो नबियों में सबसे बड़ा था। जो इंसाफ के मुहाफिज होते हैं, अक्सर उनके जरिए बेगुनाहों की मौत वारिद हो जाती है। वो जो शराब का प्याला अपने होंठों से लगाता है, वो अदल को पसे पुश्त डाल देता है। वो उन गलत फैसलों के नताइज का जिम्मेदार है जो उसने नशा की हालत में किए, क्योंकि नशा की हालत में वो नेकी और बदी, रास्त और नारास्त में इम्तियाज करने का अहल नहीं रहता। यूं हेरोदेस ने इबलीस को मौका दिया कि उसके जरिया मासूम का खून करे। मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई उनसे फरेब खाता है दाना नहीं। अमसाल 1:20। अदालत हटाई गई और अंसार दूर खड़ा रहा। सदाकत बाजार में कर पड़ी और रास्ती दाखिल नहीं हो सकती। हां, रास्ती गुम हो गई, और वो जो बदी से भागता है वो शिकार हो जाता है। खुदावन ने ये देखा और उसकी नजर में बुरा मालूम हो कि अदालत जाती रही। यसय्याह 14:15। वो लोग जो नशा की हालत में दूसरों की जिंदगियों से खेलते और बेइंसाफी के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें मासूमों की जिंदगियों से खेलते और बेइंसाफी के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें मासूमों की जिंदगियों का जिम्मेदार ठहराया जाए।
वो तमाम लोग जो कानून बनाते हैं उन्हें खुद कानून की पैरवी करना चाहिए, उन्हें खुद पर पूरा पूरा जब्त होना चाहिए, उन्हें पूरी तरह अपनी जिस्मानी, जहनी और अखलाकी कुवा पर जब्त हासिल हो, क्योंकि वो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं और उनके हाथ में अंसाफ की बाग दौड़ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर हेरोदियस के पास लाया गया तो उसकी शैतानी खसलत को तस्कीन मिली। वो यूहन्ना से बदला लेकर फूले न समाती थी। उसने सोचा कि अब हेरोदेस का जमीर उसे मलामत करना छोड़ देगा, मगर याद रहे कि हेरोदियस को अपने इस गुनाह से कोई खुशी नसीब न हुई। वो बदकमाशों में शामिल हुई और उसका नाम नफरत से लिया जाने लगा। हेरोदेस का जमीर उसे मजीद झुंझोड़ने लगा। उसे बार बार याद पड़ता कि नबी ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था, यूहन्ना की तालीम का असर खत्म न हो बल्कि उसकी तालीम का असर रहती दुनिया तक रहेगा। हेरोदेस का गुनाह हमेशा उसके सामने रहता था और उसका मजरूह जमीर हमेशा उसे मलामत करता रहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के एतमाद और ईमान को कोई लर्जा न सका। हेरोदेस को जब उसकी खुद इनकारी की बेलोस खिदमत, पाकीजा जिंदगी, संजीदा और पुरखलूस इल्तिमासात और उसकी मौत याद आती तो वो तड़प उठता। हुकूमती मामलात में मशगूल जब वो अवाम से इज्जत तकरीम पाता, अपने उम्रा से मिलता तो उसके चेहरे पर रिवायती मुस्कुराहट देखी जा सकती थी, मगर उसके अंदर अजीब जंग जारी थी। वो महसूस करता था कि उस पर खुदा की तरफ से लानत और खौफ वारिद हो चुका है जो उसे कुचले जा रहा है। हेरोदेस यूहन्ना के इस कलाम से खासा मुतासिर था कि खुदा की नजरों से कुछ भी छप नहीं सकता। हेरोदेस इस बात का भी कायल था कि खुदा हर जगह हाजिर और नाजिर है, और ये कि वो उस कमरा में भी था जहां ज़ियाफ़त का इब्तमाम किया गया था। वो ये भी मानता था कि जब यूहन्ना का सर पलम करने का हुक्म दिया गया, उस हुक्म को खुदा ने सुना और हेरोदियस की खबासत को भी देखा, और खुदा ने यूहन्ना के कटे हुए सर की बेहुरमती भी देखी। इसके अलावा तमाम मनादी जो हेरोदेस ने यूहन्ना से बयाबान में सुनी, बड़ी वजाहत से उसकी रूह के साथ मुजाहमत करती रही। और जब हेरोदेस ने मसीह येसु के कामों के बारे सुना तो उसे मजीद परेशानियों ने घेर लिया। वो सोचता था कि यूहन्ना को खुदा ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया है, और उसे ये मुसलसल खौफ था कि यूहन्ना उसके खानदान पर लानत भेजकर उससे बदला लेगा। हेरोदेस गुनाह का वही फल काट रहा था जो उसने बोया था, और ये खुदा ही ने फरमाया है, उन कौमों के बीच तुझको चैन नसीब न होगा और न तेरे पांव के तलवे को आराम मिलेगा, बल्कि खुदावंद तुझको वहां दिल लर्जा और आंखों की धुंध लाहत और जी की कढ़न देगा, और तेरी जान दुब्धे में अटकी रहेगी और तौरात दिन डरता रहेगा, और तेरी जिंदगी का कोई ठिकाना न होगा, और तू अपने दिली खौफ के और उन नज़ारों के सबब से जिनको तू अपनी आंखों से देखेगा सुबह को कहेगा कि ऐ काश के शाम होती, और शाम को कहेगा ऐ काश के सुबह होती। गुनागार के अपने ख्यालात ही उसे मुजरिम ठहराते हैं, और कसूरवार जमीर से किसी और का गहरा डंग नहीं होता जो दिन रात बेचैन रखता है। बहुत सी रूहों के लिए यह सवाल अभी बाकी है कि खुदावन ने यूहन्ना को क्यों कैद तन्हाई में मरने के लिए छोड़िया। गो हमारे इंसानी जहन इस भेद को समझने से कासिर है, मगर इससे खुदा पर हमारा ईमान ये सोचकर कम नहीं होना चाहिए कि यूहन्ना की किस्मत में दुखों के सिवा कुछ भी नहीं था। तमाम जो मसीह की पैरवी करते हैं इस कुर्बानी के एवज जिंदगी का ताज पहनेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जवानी और बचपन दोनों ही मुस्तकबिल मिजाजी और अखलाकी कुव्वत का नमूना थे। जब उसकी ये आवाज खुदावन की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ बयाबान में सुनी गई तो उससे इब्लीस लर्जां हुआ, और उसे महसूस हुआ जैसे उस आवाज से उसकी हकूमत को खदशा लाहक हो गया है। यूहन्ना ने जब इंसानों पर गुनाह की सूरत जाहिर की तो वो कांप उठे। बहतीरों ने जो इब्लीस के कब्जा में थे खुद को उससे आजाद करा लिया। इब्लीस तो अनथक कोशिश कर रहा था कि यूहन्ना को खुदा से वर कर देगर, उसे हर बार मुंह की खाना पड़ी। मसीह ने भी इब्लीस को बयाबान में शिकस्त दी थी, जिससे वो बड़ा गजबनाक हुआ। अब उसने चाहा कि यूहन्ना को दुख पहुंचाकर मसीह को सोगवार करे। मसीह ने अपने खादिम को छुड़ाने के लिए मदाखलत न की, क्योंकि वो जानता था कि यूहन्ना आजमाइश में सुरखरू होगा। यसू तो खुद जेल में आकर यूहन्ना की उदासी को खुशी में तब्दील करके आजाद भी करा सकता था, मगर उनकी खातिर जो बाद में यूहन्ना की तरह मौत की कैद बर्दाश्त करने को थे, यूहन्ना को जामे शहादत नोश करने दिया। मसीह यसू के पैरोकार खा तनहा हसरत और यास में पड़े हों, या तलवार से मारे, या जंजीरों में जकड़े हुए हों, या शिकंजे में किसे हों, या खुदावंद और इंसान दोनों ने उन्हें तर्क कर दिया हो, उनके लिए यूहन्ना का तजर्बा कितना हौसला अफजा होगा, जिसके बारे में मसीह ने खुद फरमाया कि जितने औरत से पैदा हुए यूहन्ना उन सब में सबसे बड़ा है। इब्लीस को यह इजाजत दी गई कि वो खुदा के खादिम की जमीनी जिंदगी कम कर दे, मगर वो जिंदगी जो खुदा में छुपी हुई थी वो उस तक रसाई ना कर सकता था, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। कलीसियों 3:3। इब्लीस इस बात से तो खुश था कि वो यूहन्ना पर आफत लाकर मसीह को रंजीदा करने में कामयाब हो गया है, मगर वो यूहन्ना पर गालिब ना आ सका। यूहन्ना को मौत ने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वो आजमाइश की कुव्वत से बिल्कुल आजाद था, यानी वो आजमाइश से इतनी दूर चला गया जहां आजमाइश की रसाई नामुमकिन थी। इस जंग में इब्लीस की खसलत नमूदार हो गई। उसने जाहिर कर दिया कि वो खुदा और इंसान का दुश्मन है। यूहन्ना के लिए बेशक कोई मोजज़ा न किया गया, मगर याद रहे कि खुदा ने उसे कभी भी तर्क न किया। आसमानी फरिश्ते हर वक्त उसकी सोहबत में रहते थे। वही उसके सामने मसीह मौऊद की पेशनगोइयां और कलाम मुकद्दस के कीमती वादे आश्कार करते थे। यही उसका सहारा थे और आने वाले जमाने में उनका सहारा रहेंगे, जो खुदा के सच्चे और वफादार खादिम हैं। यूहन्ना और उसके बाद आने वालों के लिए भी ये यकीन दहानी है। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 20:29। न हनूक, जिसे खुदा ने आसमान पर जिंदा उठा लिया, और ना ही एलिया, जिसे खुदा ने आग के साथ में आसमान पर उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बुजुर्ग तर है जिसने कैद तन्हाई में जान दी, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान ला बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। फिलिपियों 29:1।